आज हम दो विश्व युद्धों के बीच में जापान की स्थिति पर चर्चा करेंगे। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जापान का उत्कर्ष आधुनिक राष्ट्र के रूप में हुआ। आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण पहलू औद्योगिक विकास था। औद्योगिक विकास के लिए जापान को कच्चे माल तथा तैयार वस्तुओं की खपत के लिए बाजार की जरूरत थी। बाध्य होकर जापान को साम्राज्यवादी विस्तार की नीति अपनानी पड़ी। इस विस्तारवादी नीति के पीछे अनेक कारण थे, जिनमें सैन्यवाद, आबादी की समस्या, राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता एवं सामंतता की आकांक्षा प्रमुख थी। सर्वप्रथम जापानी साम्राज्यवाद का शिकार चीन हुआ। 1894 से 95 ईस्वी में चीन जापान युद्ध में चीन पराजित हुआ और जापान को यूरोपीय शक्तियों द्वारा आरोपित असमान संधियों से मुक्ति मिली। यह विजय जापानी साम्राज्यवाद का आधार स्तंभ सिद्ध हुआ और इसी आधार पर आगे चलकर जापान ने अपने साम्राज्यवादी जीवन की इमारत खड़ी की थी। 1902 ईस्वी की आंगल जापान संधि ने जापान के साम्राज्यवादी जीवन पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। इंग्लैंड का समर्थन पाकर जापान पूर्वी एशिया में रूस की प्रसारवादी नीति का विरोध करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ 1904 और 5 में रूस और जापान का युद्ध हुआ, जिसमें रूस पराजित हुआ। रूस की पराजय से जापानी साम्राज्यवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। रूस ने कोरिया में जापान के अधिकारों को स्वीकार किया और उसे लियाओतुंग का पट्टा तथा पोर्ट आर्थर का बंदरगाह दे दिया। जापान को साखालिन का आधा भाग भी मिला। 1905 ईस्वी में क्वांगतुंग और काराकुतो पर भी जापान ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 22 दिसंबर 1905 ईस्वी को चीन और जापान के बीच पेकिंग की संधि हुई। संधि के अनुसार चीन ने मंचूरिया के 16 नगरों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया। यालू नदी के किनारे जंगलों से माल तैयार करने के लिए एक चीनी जापानी निगम बनाने की व्यवस्था की गई। 1906 ईस्वी में जापानी सरकार ने एक रेलवे कंपनी बनाई। मंचूरिया में जापानी उद्योगों एवं रेल और सड़कों के प्रबंधन के लिए दक्षिण मंचूरिया रेलवे कंपनी बनाई। कोरिया समस्या विशाल मंचूरियाई समस्या का अंग बन चुकी थी और जापान इसकी अवहेलना नहीं कर सकता था। वह कोरिया को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। 1910 ईस्वी में जापान का शासन कोरिया पर स्थापित हुआ, जो 1945 ईस्वी तक कायम रहा। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। जापान में पहले से ही जर्मन विरोधी भावना जोर पकड़ रही थी। जापान ने मौका से लाभ उठाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने का निर्णय लिया। 1898 ईस्वी में ही जर्मनी ने चीन के शानतुंग और क्याउचाउ प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। पूर्वी एशिया में जर्मनी के प्रभाव को नष्ट करने एवं अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए जापानी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि जर्मनी से क्याउचाउ का पट्टा और शानतुंग प्रदेश की मांग की जाए। जर्मनी से जवाब नहीं मिलने पर जापान ने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध से जापान लाभान्वित हुआ। चीन पर अपना प्रभाव कायम रखने के उद्देश्य से जापान ने 18 जनवरी 1895 ईस्वी को चीन के समक्ष 21 मांगे रखी। शानतुंग के संबंध में कहा गया, वहां जापान को रेल मार्ग बनाने और बंदरगाहों में खुली व्यापार की छूट दी जाए। दक्षिण मंचूरिया एवं पूर्वी मंगोलिया में जापान को रेल मार्ग बनाने और बंदरगाहों के पट्टा की अवधि 99 वर्ष कर दी जाए। साथ ही जापानी नागरिकों को आवास, उद्योग धंधा चलाने एवं जमीन जायदाद बनाने का अधिकार दिया जाए। चीन जापान के अतिरिक्त किसी अन्य देश को अपने तट पर बंदरगाह, खाड़ी या द्वीप पट्टे पर नहीं देगा। चीन में राजनीतिक, वित्तीय तथा सैनिक सलाहकार जापानी ही होंगे। दक्षिणी चीन में जापान को रेल मार्ग बनाने का अधिकार रहेगा। चीन में जापानी प्रचारकों को प्रचार का अधिकार रहेगा। 1919 ईस्वी में शांतुंग पर जापान का अधिकार मान लिया गया। राष्ट्रसंघ की ओर से प्रशांत महासागर के द्वीपों का संरक्षक राज्य नियुक्त किया गया, लेकिन जापान इन द्वीपों पर मनमाना शासन करता रहा। पेरिस शांति सम्मेलन से जापान निराश लौटा था। वह अपनी नाविक शक्ति को बढ़ा रहा था, जिससे अमेरिका काफी चिंतित था। प्रशांत महासागर में जापानी प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका भी अपनी नौशक्ति को बढ़ा रहा था। इंग्लैंड भी इस होड़ में सम्मिलित हो चुका था। इस नाविक प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाने के लिए 12 नवंबर 1921 ईस्वी को वाशिंगटन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वाशिंगटन सम्मेलन द्वारा नौ सैनिक होड़ को सीमित करने का प्रयास किया गया था, साथ ही चीन को प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की मान्यता दी गई थी। सम्मेलन के निर्णयों के फलस्वरूप चीन में जापानी साम्राज्यवाद के प्रसार पर नियंत्रण लग गया था। 1928 ईस्वी में जापान ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध मना था। जापान, ब्रिटेन और अमेरिका से समझौता करके अपनी नाविक योजना में कटौती करना स्वीकार कर लिया था, लेकिन जापान की यह शांतिवादी नीति अल्पकालीन थी। उसकी साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां उमड़ रही थी, जो अनुकूल परिस्थिति मिलते ही जागरूक हो गई। जापान सैन्यवादियों के नेतृत्व में पुनः उग्र साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करने लगा। इसी समय जापान में विकृत राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसे हम जापानी साम्राज्यवाद को एक नया जीवन प्रदान करते हुए देखते हैं। विकृत राष्ट्रवादी सिद्धांत के अनुसार जापान का ध्यान चीन की ओर था। यहाँ विदेशी पट्टों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। जापान के सैनिकवादी तथा पूंजीपति चीन को विभाजित रखना चाहते थे। जापानी नेता चीन पर आक्रमण करना चाहते थे। जापान मंचूरिया में रूसी नीति का विरोधी था। जापान चीन में साम्यवाद को बढ़ते हुए प्रभाव से भी भयभीत था। वह रूसी बोल्शेविक क्रांति का भी विरोधी था। 1930 ईस्वी का विश्वव्यापी आर्थिक संकट भी जापानी साम्राज्यवाद के पुनरुद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण था। जापानी साम्राज्य के शोषित वर्गों में शोषकों के खिलाफ आवाज उठ रही थी। ऐसे समय में अपने बचाव के लिए जापानी पूंजीपतियों ने विकृत देशभक्ति को उभार कर तथा उग्र सैन्यवादी एवं आक्रामक विदेशी नीति को प्रोत्साहन देकर जनता का ध्यान भूखमरी और बेकारी की ओर से अलग किया। जापान अपनी बढ़ती हुई आबादी को मंचूरिया में बसाना चाहता था, साथ ही वह अपना तैयार वस्तुओं की खपत के लिए एक विस्तृत आर्थिक क्षेत्र की आवश्यकता महसूस कर रहा था, जहां उसे आयात करो एवं संरक्षण नीति का भय नहीं हो। तनाका मेमोरियल में जापान की स्थिति में की बढ़ती हुई आबादी, कच्चे मालों की दुर्लभता, आर्थिक संकट आदि का उल्लेख करते हुए जापान के लिए उग्रवादी आक्रामक नीति के अवलंबन पर जोर दिया गया था। 1931 ईस्वी में मंचूरिया जापान की आक्रामक नीति का शिकार हुआ। चीन के निवासियों ने जापान के आक्रामक कार्रवाई का प्रतिरोध करते हुए जापानी मालों का बहिष्कार किया। मंचूरिया में एक कठपुतली सरकार की स्थापना की गई। साम्राज्यवादी शक्तियों ने जापान के नग्न आक्रमण को इस आशा में भुला दिया कि जापान का मुख्य उद्देश्य रूस के प्रसार को रोकना है। जापान की साम्राज्यवादी लिप्सा बढ़ती ही जा रही थी। उसने 1936 ईस्वी में जर्मनी और 1937 ईस्वी में इटली के साथ संधि की। इस प्रकार रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ। दो महान शक्तियों की मित्रता प्राप्त कर जापान विस्तारवाद की ओर अग्रसर हुआ। इस बार उसने चीन को पूरी तरह से जीतने का प्रयास किया। 1937 ईस्वी में चीन और जापान में युद्ध हुआ जिसमें चीन पराजित हुआ। 22 मार्च 1938 ईस्वी को जापानी सेनाधिकारियों ने नानकिंग में एक कठपुतली सरकार की स्थापना की और अपना सैनिक अभियान जारी रखा। 1939 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध के छिड़ने के बाद जापान को अपने विस्तारवादी नीति को सफल बनाने का बड़ा ही शुभ अवसर प्राप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी साम्राज्यवाद। युद्ध छिड़ते ही यूरोप के राज्य जीवन मरण के संघर्ष में व्यस्त हो गए थे। जापान के लिए रास्ता बिल्कुल खाली था। पूर्वी एशिया में वह अपनी इच्छा अनुसार नीति को कार्यान्वित कर सकता था। सितंबर 1940 ईस्वी में जापान जर्मनी और इटली के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। संधि के अनुसार जर्मनी और इटली ने पूर्वी एशिया में जापान के आधिपत्य स्थापित करने के अधिकार को मान लिया। अप्रैल 1941 ईस्वी में रूस और जापान ने तटस्थ संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के अनुसार तय किया गया कि तीसरी शक्ति के साथ युद्ध की स्थिति में दूसरा तटस्थ रहेगा। रूस मंचुकाओं पर जापानी अधिकार को मान्यता दे और जापान मंगोलिया पर रूसी अधिकार को स्वीकार कर ले। जापान हिंद चीन में हाथ पैर फैलाना चाहता था क्योंकि उस क्षेत्र में जापान के सैनिक एवं आर्थिक हित थे। जुलाई 1941 ईस्वी के अंत तक जापान की सेना इस क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। जापान मलाया पूर्वी द्वीप समूह तथा फिलीपींस पर भी कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। हिंद चीन पर जापानी अधिकार का अमेरिका ने विरोध किया। इसी समय जापान ने इंडोनेशिया के डच उपनिवेश पर एक संधि आरोपित कर अपना प्रभाव कायम कर लिया। जापान का झुकाव अमेरिका की ओर हो चुका था लेकिन अमेरिकी जापानी संधि वार्ता सफल नहीं हो सकी और दोनों देशों के संबंध में गतिरोध उत्पन्न हो गया। जुलाई 1941 ईस्वी में जापान और अमेरिका का संबंध काफी बिगड़ चुका था। अमेरिकी सरकार ने जापान के साथ व्यापार पर सरकारी नियंत्रण कायम किया। जापान बौखलाकर अमेरिका के साथ युद्ध करने को तैयार हो गया। 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापानी सेना ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। पर्ल हार्बर के बाद जापान दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्वी द्वीप समूह और फिलीपींस को घेरने का प्रयत्न करने लगा। उसका तात्कालिक लक्ष्य मिडवे, वेक, गुलाम, हांगकांग, फिलीपींस, थाईलैंड, मलाया था। 25 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान ने हांगकांग पर भी अधिकार कर लिया। जापानी सेना थाईलैंड और हिंद चीन के रास्ते मलाया और सिंगापुर पहुंची। मलाया अभियान के साथ साथ जापान ने वर्मा पर भी आक्रमण किया। जून 1942 ईस्वी तक मलाया जापान के अधीन आ गया। फिलीपींस भी जापानी आक्रमण का शिकार हुआ। 2 जनवरी 1942 ईस्वी को मनीला पर जापान का अधिकार हो गया। 16 मई तक संपूर्ण फिलीपींस और 12 जून तक अलेशियन द्वीप जापान के अधीन आ चुके थे। इस प्रकार जापानी साम्राज्यवाद उत्तर में सखालिन, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में वर्मा से पूरब में गिलबर्ट द्वीप तक फैल गया। 1942 ईस्वी के मध्य से युद्ध की दिशा बदलने लगी। मित्र राष्ट्र जापान द्वारा बिना शर्त आत्मसमर्पण चाहते थे। मित्र राष्ट्रों ने मिडवे, ग्वाडल कैनाल और एल्यूशियंस की लड़ाइयाँ जीत ली थी। ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी सेनाओं ने दक्षिण पश्चिमी प्रांत के मुख्य जापानी सैनिक अड्डा रे वाल को निष्क्रिय बना दिया था। चीन, वर्मा, भारत मोर्चा पर भी अंग्रेजी सेना को सफलता मिली थी। जून 1945 ईस्वी तक फिलीपींस पर अमेरिका का अधिकार हो गया था। डच और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं ने बोर्नियो के तेल समृद्ध प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया था। समुद्री संग्राम और हमला के कारण जापानी बेड़ा और हवाई ताकत समाप्त हो रही थी। 1945 ईस्वी तक जापान की सैनिक शक्ति पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी। यूरोप में जर्मनी आत्मसमर्पण कर चुका था, लेकिन जापान अभी भी डटा हुआ था। जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की चेतावनी अमेरिका, इंग्लैंड और चीन की ओर से दिया गया, लेकिन जापान ने इसे ठुकरा दिया। अंततः अमेरिका ने जापान के विरुद्ध परमाणु बम का प्रयोग करने का निर्णय लिया। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम का प्रयोग हुआ। नागासाकी पर भी परमाणु बम का प्रयोग किया गया। रूस ने भी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सोवियत सेना ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और कोरिया के 2 बंदरगाहों पर भी अधिकार कर लिया। जापान के समक्ष अब आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं था, लेकिन जापान के निवासी अंतिम युद्ध के लिए तैयार थे। अंत में बाध्य होकर 2 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही जापान के साम्राज्यवादी जीवन का अंत हो गया। यह स्थिति जापान की दो महायुद्धों के मध्य की थी।